परमेश्वर का वचन इन दिनों में हम देख रहे थे, और आज परमेश्वर का वचन देखने से पहले मैं, आप जानते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी भूलने की बीमारी सबको है, ये एक बड़ी कॉमन बीमारी होती है, तो फिर से याद दिलाना चाहता हूं, प्रभु का वचन सुनने के लिए नहीं है, प्रभु का वचन सुनकर उस पर अमल करके उसके अनुसार जीने के लिए प्रभु का वचन हमको सुनाया जाता है। और प्रभु का वचन हमको ये भी बताता है, जो व्यक्ति जितना ज्यादा परमेश्वर का वचन सुनता है उतना ज्यादा हिसाब परमेश्वर उसे मांगेगा। तुमने बहुत सुना परमेश्वर का वचन, तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होना चाहिए। उसने परमेश्वर का वचन कम सुना, इसलिए उसको उस हिसाब से प्रभु पूछेगा। लेकिन हम जो बार 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 परमेश्वर का वचन सुनते हैं, प्रभु हमसे ज्यादा हिसाब मांगेगा। इसलिए प्रभु का वचन सुनना ही नहीं, उसके अनुसार चलना भी बहुत जरूरी है। यही बात प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने शिष्यों से कहा। बड़ी मेहरबानी से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय, प्लीज हेल्प मी इन रीडिंग गॉस्पल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 21 पद, यीशु मसीह का गिरी उपदेश है, सर्मन ऑन द माउंट। उसमें प्रभु अपने शिष्यों को क्या कहता है, अपने लोगों को क्या कहता है, मत्ती 7 अध्याय 21 पद।
प्रत्येक जो मुझसे हे प्रभु कहता है,
हर एक व्यक्ति जो मुझसे हे प्रभु जी, हे प्रभु जी, हे प्रभु जी कहता है,
स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा,
स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन
परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है,
परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है
वही प्रवेश करेगा,
वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। हर एक व्यक्ति जो प्रभु जी जाते समय, आते समय, उठते समय, बैठते समय जो प्रभु जी बोलते हैं, सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करे। लेकिन स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाले केवल वही लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा ये है, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परमेश्वर के वचन पर अमल करते हैं, परमेश्वर की मर्जी हम जानते हैं, हम समझते हैं, और उसके बाद परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जब हम जीवन बिताते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देता है, और ऐसे लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। प्रभु जी बोलने वाले नहीं। कुछ लोग होते हैं ना, जाते समय भी प्रभु जी, आते समय भी प्रभु जी, जिसको देखा प्रेज द लॉर्ड, सब्जी मंडी में गए प्रेज द लॉर्ड, चर्च में आए प्रेज द लॉर्ड। यहां की बात नहीं मालूम, हमारे राजस्थान में बहुत चलता है। एक भाई गवाही दे रहे थे, गवाही देते देते बोले, मेरा लड़का 10th में 3 बार फेल हो गया, इतने में पीछे से कोई बोला प्रेज द लॉर्ड। इसमें प्रेज द लॉर्ड बोलने की क्या बात? फिर उसके बाद एक बार एक दूसरे भाई ने बोला, मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे पिताजी गुजर गए। फिर बाद में वहां से कोने से दूसरा बोला प्रेज द लॉर्ड। इसमें प्रेज द लॉर्ड बोलने की क्या बात? कुछ होते हैं हर बात में और सब बात में प्रभु जी बोलते रहते। वो लोग प्रभु पसंद नहीं करता, लेकिन प्रभु उनको पसंद करता है जो प्रभु का वचन सुनते हैं, समझते हैं, और उसके अनुसार चलते हैं। एक बार कुछ लोग बस यात्रा में बस में यात्रा कर रहे थे, तो बस में 3 प्रकार का टिकट था, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। तो अब ट्रेन में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास करें तो अलग अलग डब्बा देते, बस में क्या करेंगे? बस में कोई कंपार्टमेंट नहीं, अलग अलग बस नहीं रख सकते। इसलिए जिसने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया वो भी एक ही बस में बैठा है, जिसने थर्ड क्लास का टिकट लिया वो भी एक ही बस में बैठा, जिसने सेकंड क्लास का टिकट लिया वो भी उसी बस में बैठा। तो बस चालू होने का समय आया, एक सज्जन ऐसा बैठे थे अपने सीट पर, सीट नंबर 1, उसके पास बाजू में दूसरा सीट नंबर 2 वाला बैठा। बोले आप कहां जाएंगे? मैं बॉम्बे जा रहा हूं। मैं भी बॉम्बे जा रहा हूं। आपका पास कौन सा टिकट है? गुस्सा आ गया उसको, क्यों? ये थर्ड क्लास का टिकट है, आपके पास फर्स्ट क्लास का टिकट है, तो तुम मेरे पास क्यों बैठे? मैं 500 रुपए का टिकट लेके बस में, तुम 100 रुपए का टिकट लेके मेरे पास बैठा है, ऐसा क्यों? वो कंडक्टर को बुलाए, बोले आज बस नहीं चलेगी। क्या हुआ साहब? पेट दुख रहा है? पेट वेट नहीं दुख रहा है मेरा, मेरे बाजू में जो बैठा है वो थर्ड क्लास टिकट होल्डर है, मेरा फर्स्ट क्लास का टिकट है, ये क्या तुम्हारा तरीका है? फर्स्ट क्लास के साथ साथ किसको बिठाते हो? थर्ड क्लास वाले को। तो कंडक्टर बोला, साहब आप फर्स्ट क्लास का टिकट लिया ना, आपको उसका उसका यात्रा का मजा मिलेगा, थोड़ा थोड़ा ठंड रखो, थोड़ा ये धैर्य रखो, थोड़ा धीरज रखो। धीरज देखता हूं, चलो। बोले तो बस चलने लगा, तो बस जब चलने लगा, अच्छा रोड से चलने लगा, शहर बाहर होने के बाद थोड़ा घाट सेक्शन आया, घाट सेक्शन समझते, पहाड़, पहाड़ वाला सेक्शन, तो पहाड़ के ऐसा ऊपर जाना है और उसके बाद नीचे आना, थोड़ा सा सेक्शन है घाट सेक्शन, थोड़ा सा कुछ किलोमीटर पहाड़ एरिया है। घाट सेक्शन शुरू होने से पहले वो बस, वो चढ़ाई चढ़ने से पहले बस रुक गया, बस रुक गया, और कंडक्टर ने बोला, ध्यान से सुनो, अब सब लोग ध्यान से सुनो, फर्स्ट क्लास वाले टिकट लोग, फर्स्ट क्लास के लोग, फर्स्ट क्लास टिकट वाले लोग बस में बैठे रहो, सेकंड क्लास वाले लोग बस से उतरो, और थर्ड क्लास, सेकंड क्लास वाले लोग बस से उतर के पैदल आना पड़ेगा तुमको, और थर्ड क्लास वाले लोग उतर के बस को धक्का मारना पड़ेगा। तब ये फर्स्ट क्लास वाला बैठ गया, अच्छा हो फर्स्ट क्लास का टिकट ले लिया, नहीं तो अभी बस से उतरना। उसी प्रकार सब लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं, सारे विश्वासी लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं, लेकिन इन सुनने वाले झुंड में कुछ फर्स्ट क्लास वाले भी हैं, कुछ सेकंड क्लास वाले भी हैं, कुछ थर्ड क्लास वाले। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कुछ ऐसे बीज हैं जो ऐसी अच्छी जमीन पर गिरते हैं, अच्छी जमीन पर गिरने के बावजूद किस प्रकार के फल लेकर आते हैं? 30 गुना 60 गुना 100। इसलिए आज इस विश्वासियों बहुत जरूरी है, आप और मैं जब परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं, प्रार्थना पूर्वक और ध्यान पूर्वक उसको सुने, उसको समझने की कोशिश करें, और अनुग्रह और प्रार्थना के साथ उसके अनुसार जीवन जब हम बिताते हैं, तभी परमेश्वर हमें आशीष देता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, और आज शाम को थोड़ी देर के लिए हम देखेंगे दानियल के जीवन में से कुछ बातें हम सीखने की कोशिश करेंगे। परसों रात को हमने यूसुफ के जीवन में से कुछ बातें सीखी थी, कल रात को हमने नहमिया के जीवन में से कुछ बातें सीखी थी, आज रात को हम दानियल के जीवन में से कुछ बातें सीखेंगे। और जैसा मैंने पहले बताया, ये तीन व्यक्ति ऐसे हैं जिनके जिनके बारे में कोई नुक्स, कोई गलती, कोई अनुचित काम, कोई खोट बाइबल में रिकॉर्डेड नहीं, इसलिए इन लोगों का जीवन अध्ययन करना, अध्ययन करने योग्य इनका जीवन, इनका जीवन अनुसरण करने योग्य जीवन है, इनका जीवन के अनुसार हम भी अपना जीवन जब बिताते हैं, परमेश्वर से आशीष और अनुग्रह पा सकते हैं। दानियल के पुस्तक उसका पहला अध्याय हम निकालेंगे, और दानियल के पुस्तक में से हम देखने की कोशिश करेंगे ये दानियल किस प्रकार का एक व्यक्ति था। हम जानते हैं दानियल के पुस्तक की पृष्ठभूमि, दानियल के पुस्तक जब लिखी गई, और दानियल जब जिस जमाने में रहता था उस समय दानियल अपने घर में नहीं रहता था, अपने देश में नहीं रहता था, वो इसराइल के लोग बंधुआई में गए थे, बाबुल देश में नबूकदनेस्सर राजा इसराइल पर लड़ाई करके, इसराइल पर जय पाकर बहुत सारे लोगों को गुलाम बनाकर, बंधुआ बनाकर, दास बनाकर, गुलाम बनाकर उनको बाबुल में ले गया, उनमें से एक कौन था? दानियल। दानियल का जीवन, दानियल की पुस्तक का जब हम अध्ययन करते हैं, दानियल की पुस्तक में तीन प्रकार के लोग हम देख सकते हैं, तीन प्रकार के लोग। पहले प्रकार के लोगों को बोलते हैं कॉम्प्रोमाइजर्स, समझौता करने वाला, चलता है ब्रदर, चलेगा, सब चलता है, समझौता करके जीने वाले लोग। दूसरे कैटेगरी के लोग हैं ऐसे लोग जिनको बीच बीच में एक सपोर्ट की जरूरत है, एक सहारे की जरूरत है, एक सहायता की जरूरत है, थोड़ा धक्का मारने की जरूरत है, ब्रदर चलो ना, चलो ना, अरे कहां चले, अरे मीटिंग में चलो ना, क्यों, कौन आया है मीटिंग में, अरे वो स्टीफन आया ना, चलो ना, चलो ना, हाँ ठीक है चले। जब तक धक्का नहीं मारते वो नहीं आएंगे, किसकेंगे नहीं। कुछ ऐसे लोग, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको दानियल के समान हम देखते हैं, हु स्टैंड अलोन फॉर गॉड्स ग्लोरी, जो अकेले परमेश्वर की महिमा के लिए। ये तो पुराने नियम में मंदिर के विभाजन के समान हो गया है ना। पुराने नियम में मंदिर में कितने भाग थे, तीन भाग। पहले भाग को बोलते हैं आंगन या प्रांगण, दूसरे भाग को बोलते हैं पवित्र स्थान, और तीसरे भाग को बोलते हैं परम पवित्र स्थान। भीड़ कहां खड़ी होती थी, प्रांगण में। पवित्र स्थान में कितने लोग खड़े होते थे, थोड़े से लोग। परम पवित्र स्थान में कितने लोग खड़े होते थे, एक व्यक्ति, महायाजक। उसी प्रकार आज ये मसीही दुनिया में, ये मसीही जगत में बहुत सारे लोग कहां खड़े हैं, प्रांगण में खड़े। चलो मीटिंग में चलो, चलो संडे है वर्शिप कर, चलता कॉम्प्रोमाइजर्स, समझौता करने वाला। अधिकतर लोग ये प्रांगण में खड़े। फिर दूसरे कैटेगरी का लोग हैं जो लोग पवित्र स्थान में खड़े हैं, अपने आप को धर्मी बताते हैं, अपने आप को पवित्र बताते हैं, अपने आप को विश्वासी बताते हैं, लेकिन बीच बीच में चलो ना, चलो ना, कहां चले, अरे वो क्या मलवानी है, मां मलवानी चलो, मलवानी क्यों, मीटिंग है, कौन आया, चिड़ियाना है, चलो चलो, हा चलो। दानियल के पुस्तक में ऐसे लोग कौन है, शद्रक मेशक अभी, अच्छे लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, लेकिन बीच बीच में थोड़ा धक्का, थोड़ा पुश, पुश नहीं मारेंगे तो नहीं चले। लेकिन एक इधर, एक बॉम्बे में, एक दिल्ली में, एक केरला में, एक राजस्थान में, कौन है, दानियल, एक इधर, एक उधर, एक इधर, परम पवित्र स्थान में एक। विश्वासियों, आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, वो एक क्या आप बनेंगे परमेश्वर के लिए? अगर बॉम्बे में प्रभु को एक दानियल खड़ा करना है, क्या आप प्रभु के लिए खड़े होंगे? प्रभु से कहेंगे, प्रभु जी मैं किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में मैं समझौता नहीं करूंगा, किसी भी हालत में मुझे धक्का मारने के कंडीशन तक मैं नहीं पहुंचूंगा, मैं हमेशा आपके लिए खड़ा रहूंगा, चाहे सब लोग मुझे छोड़ दें, चाहे सब लोग मुझे त्याग दें, चाहे मुझे अकेला खड़ा होना पड़े, तो भी मैं तेरे लिए मैं अकेला खड़ा होऊंगा। संडे स्कूल के बच्चे कोरस गाते हैं, डेयर टू बी अ डैनियल, डेयर टू स्टैंड अलोन। दानियल बनने का दमखम रखना चाहिए, अकेले खड़े होने का हिम्मत चाहिए, क्यों, ताकि हम परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके। दानियल के जीवन में से कुछ सद्गुण को देखने की कोशिश करेंगे। चैप्टर 1:3, दानियल के पुस्तक पहला अध्याय उसका 3 पद क्या लिखा है, ऐसे किसको लेकर आ, कई जवानों को लेकर। इसका मतलब कई जवानों को जब लेकर आए, उसमें से एक कौन था, 6 पद पढ़िए, verse 6, थोड़ा जोर से, हाँ,
तो निर्दोष सुंदर, हाँ, और सब प्रकार के बुद्धि में प्रवीण,
हाँ,
और ज्ञान में निपुण, और विद्वान, और राजमंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे।
verse 6,
उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल,
हाँ, उनमें यहूदा के संतान से चुना हुआ कौन था, दानियल। 3 पद में हमने पढ़ा, नबूकदनेस्सर राजा जाकर कई जवानों को
लेकर आए।
उनमें से एक कौन था?
दानियल।
और उनमें से कुछ लोग और कौन थे?
शद्रक, मेशक, अबेदनगो।
लेकिन उनमें से एक दानियल थे।
दानियल
जब बाबुल में आया, दानियल की उम्र क्या थी मालूम है?
ओनली 17 ईयर्स,
17 साल का एक जवान। लेकिन दानियल के पुस्तक का अंत में आते आते दानियल की उम्र क्या है मालूम है?
डैनियल्स एज इज 90 ईयर्स,
90 साल। यह हमें किस बात को बताता है? यह हमें इस बात को बताता है, गॉड हैज नो एज बार प्रॉब्लम। परमेश्वर के लिए आपकी और मेरी आयु एक बड़ी समस्या नहीं। अगर हम बचपन में अपना जीवन प्रभु को सौंपेंगे, प्रभु ये नहीं कहेगा अयो इतना सा बच्चा कैसे,
नहीं।
अगर हम हमारे वृद्धावस्था में अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, प्रभु ये नहीं बोलेगा अयो ये बुजुर्ग, इनको मैं कैसे संभालूंगा, क्या करूंगा।
एज बार प्रॉब्लम प्रभु के लिए नहीं।
चाहे आप छोटे हो, चाहे आप बड़े हो, चाहे आप मध्यावधि के व्यक्ति के हैं, उम्र के हो, आपके आयु कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर के लिए आपकी आयु कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन परमेश्वर का प्रॉब्लम क्या है? परमेश्वर, गॉड्स प्रॉब्लम इज ए डेडिकेटेड हार्ट। परमेश्वर का प्रॉब्लम है कि जो भी व्यक्ति परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करते हैं, पूरे रीति से अपना जीवन समर्पित नहीं करते। हर संडे गीत तो गाते हैं, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूं कुर्बान, लेकिन कुर्बान और बलिदान देने का समय आता है,
वो तो गीत है ब्रदर, कैसे कुर्बान करें है? कुर्बान नहीं कर सकते।
प्रभु के लिए ये डेडिकेटेड हार्ट, समर्पित दिल, प्रभु जी मैं मानता हूं मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन मैं अपना जीवन पूरी तरह से आपको सौंपता हूं, मेरा जीवन, मेरा हृदय से मैं संपूर्ण रीति से आपको सौंपता हूं, आप मेरा जीवन ले लीजिए प्रभु जी, जैसे आप मेरा जीवन बनाना चाहते आप बनाइए। प्रभु जी मैं बहुत बुजुर्ग हूं, मैं इतने साल का व्यक्ति हूं, तो भी प्रभु जी मैं अपना जीवन संपूर्ण रीति से आपको सौंपता हूं प्रभु जी, संपूर्ण समर्पण, कंप्लीट एंड टोटल डेडिकेशन प्रभु जी, मैं सब कुछ आपको देता हूं। जब हम ये कहकर वास्तव में अपना सब कुछ हम प्रभु को देते हैं, प्रभु हमें आशीष देता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में हम सबने सुना है, बहुत बड़ा एक चक्रवर्ती सम्राट था, उसका राज्य दुनिया के कोने कोने में फैला हुआ था, सिकंदर बादशाह, अलेक्जेंडर द ग्रेट। एक बार जब वो एक लड़ाई कर रहा था, एक बहुत ही शक्तिशाली शत्रु के साथ वो लड़ाई कर रहा था, उसने अपना सारा युद्ध के लिए अपना सारा सेना, सारा ताकत उसने लगा दिया, और सारा ताकत लगाने के बाद मुश्किल से उसने वो युद्ध जीता। युद्ध जीतने के बाद जश्न बनाते हुए, सेलिब्रेशन के साथ जब वो वापस अपने नगर में आया, महानगर में, उसको खबर मिला उसका एक खास सोल्जर है, उसका एक खास सैनिक वो युद्ध में बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके दोनों टांग बर्बाद हो गए, दोनों टांग को काटना पड़ा। अलेक्जेंडर द ग्रेट को बहुत दुख हुआ, उसने कहा मैं हॉस्पिटल में जाके उससे मिलूंगा, उसको देखूंगा। वो हॉस्पिटल में उसको मिलने गया और वो देखा कोने में पड़ा हुआ है, शरीर तो पूरा ठीक है लेकिन ये पेट के नीचे दो पैर नहीं। अलेक्जेंडर उसके पास गया, बोला कॉमरेड आई एम प्राउड ऑफ यू, बोला सैनिक मैं बहुत घमंड हूं, मुझे बहुत नाज है तुम पर, मुझे बहुत गर्व है तुम पर। लेकिन फिर बाद में बोला बट आई एम सो सॉरी यू हैव लॉस्ट योर लेग्स, लेकिन मुझे बहुत दुख है, अफसोस है कि तुमने तुम्हारे पैर खो दिए, तुमने पैर खो दिए, हमने जीत तो हासिल कर ली, तुम पर नाज भी है लेकिन दुख इस बात का है मलाल कि तुमने तुम्हारे पैर खो दिए। उस सैनिक ने क्या कहा मालूम है? उस कॉमरेड ने कहा सर आई लव यू, Who am I to fight for you in your army? I want to tell you one thing. I have not lost my legs. I have given them to you.
उसने कहा, स्वामी, मैं आपसे प्रेम करता हूँ. मेरी क्या हैसियत है कि मैं आपकी सेना में आपके साथ लड़ाई करूँ? आप बड़े बादशाह हैं, लेकिन आपने मुझे आपके साथ लड़ाई करने के लिए नियुक्त किया आपकी सेना में. मैंने अपने पैर खोए नहीं हैं, मैंने अपने पैर आपको दे दिए हैं, दे दिए. अजीज विश्वासियों, आप और मैं, हम प्रभु को क्या देते हैं? प्रभु से हम बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन जब देने की बात आती है हम कुछ नहीं देते. प्रभु कुछ चाहता भी नहीं है. प्रभु एक खास चीज आपसे और मुझसे चाहता है, वो है संपूर्ण समर्पण, कंप्लीट डेडिकेशन, टोटल सरेंडर, संपूर्ण समर्पण. कोई भी आयु क्यों ना हो, चाहे आप 17 साल के क्यों ना हो, चाहे आप 90 साल के क्यों ना हो, चाहे कुछ भी उम्र क्यों ना हो, संपूर्ण समर्पण के साथ प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंपेंगे, प्रभु आपको लेगा, आशीष देगा, इस्तेमाल करेगा, समस्त अनुग्रह आपको प्रदान करेगा. दूसरी एक और बात जो दानियल के जीवन से हम सीखते हैं, हम पढ़ेंगे उसका दानियल चैप्टर 2 वर्स 27 एंड 28. दानियल के पुस्तक 2 अध्याय उसका 27 और 28 पर. दानियल चैप्टर 2 वर्सेस 27 एंड 28.
दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वो ना तो पंडित, ना तंत्री, ना ज्योतिषी, ना दूसरे भाव बताने वाला राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में, और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को जताया कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है. तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वो ये है.
यहाँ पर राजा दानियल को बुला रहा और दानियल से पूछता है, क्या तुम मेरे सपने का, मेरे सपने को और सपने का अर्थ बता सकते हो? तब दानियल ने क्या कहा? दानियल कहता है, ओ राजा है, आप महान हैं, आपने जो सपना देखा है वो कोई तांत्रिक नहीं बता सकता, वो कोई जादू करने वाला नहीं बता सकता, वो कोई जादू टोने करने वाला नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपका योग्य दास, मैं बता सकता हूँ, मैं बताऊंगा. ऐसा बोला क्या? नहीं. उसने कहा, दानी हे राजा, आपका सपना और आपके सपने का अर्थ कोई नहीं बता सकता, स्वर्ग का परमेश्वर ही केवल उसको बता सकता. ये हमें किस बात को बताता है? दिस शोज अस दैट डैनियल वॉज अ हम्बल मैन ऑफ गॉड. यह हमें इस बात को बताता है, दानियल परमेश्वर का एक नम्र व्यक्ति था, एक दीन आदमी था. अभी दानियल चाहता तो बोल सकता था, है ना, कि ये राजा ये सपना तांत्रिक नहीं बता सकते, ये सपना जादू टोना करने वाले नहीं बता सकते, लेकिन आपका अयोग्य दास मैं, मेरा नाम दानियल है, मेरा एड्रेस वो है, मेरा फोन नंबर ये है, मैं आपको बता सकता हूँ. मैं भी इतना छोटा नहीं हूं जितना आप है, आप बड़े हैं, मैं भी बड़ा हूं. दानियल कहता है, मैं कुछ भी नहीं, मैं एक छोटा परमेश्वर का दास हूं, मेरा परमेश्वर आपका सपना और सपने का अर्थ बता सकता. ही वॉज अ हम्बल मैन, एक नम्र व्यक्ति था. अपने आप को उठाने का मौका आया तो भी वो कहता है, मैं नहीं, मेरा प्रभु, नॉट मी बट माई लॉर्ड. आगे एक और बात वो कहता है, चैप्टर 9 अध्याय उसका 5 और 6 पद पढ़िए मेहरबानी से. चैप्टर 9 वर्स 5 एंड 6 दानियल की नम्रता के बारे में हम और पढ़ते हैं. वहां पर क्या लिखा है? दानियल चैप्टर 9 वर्स 5 एंड 6.
हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया, और तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी.
यहाँ पर दानियल की नम्रता के बारे में हम और देखते हैं. 9 अध्याय 5 पद कैसा शुरू होता है? वापस पढ़िए पहली लाइन, किन लोगों ने?
हम लोगों ने.
हम लोगों ने, इसका मतलब क्या है? Daniel is including himself.
Daniel अपने आप को भी शामिल करके कहता है,
प्रभु जी आपके सामने जो इसराइलियों ने पाप नहीं किया, आपके सामने किसने पाप किया? हमने पाप किया।
लेकिन बाइबल जब हम ध्यान से अध्ययन करते हैं, दानियल का कोई पाप नहीं, दानियल ने कोई पाप नहीं किया, दानियल ने कोई गलती नहीं की, दानियल के जीवन में कोई नुक्स नहीं है, दानियल के जीवन में कोई खोट नहीं है। फिर भी जब प्रार्थना करने का समय आया, दानियल कहता, प्रभु जी हमने पाप किया, हमने विरोध किया, हमने विद्रोह किया, हमने बलवा किया, हमने तेरे आज्ञाओं के लिए अनज्ञा करी रहे,
हमें माफ करना, हमारी प्रार्थना को सुन। डैनियल इज सो हम्बल, हम्बल इनफ टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद गॉड्स पीपल। उसको मालूम है पाप परमेश्वर के लोगों ने किया है,
पाप इसराइल की प्रजा ने किया है, इसराइल की प्रजा परमेश्वर के लिए अनज्ञा करी रही, उसकी आज्ञाओं को नहीं माना, उसके विरुद्ध विद्रोह किया, बलवा किया, दुष्टता का काम किया।
लेकिन प्रार्थना में क्या कहता है? प्रभु जी हम लोगों ने पाप किया। दानियल नम्र व्यक्ति था। मैं सोचता हूं कभी कभी उसके दानियल की जगह अगर मैं होता तो शायद कैसे प्रार्थना करता, अरे प्रभु जी ये इन लोगों ने पाप किया, अरे ये ऐसे ये सब के सब पाप, एक मैं ही हूं। दानियल ऐसा आदमी नहीं था। दानियल कहता है प्रभु जी हमने पाप किया, हमने गलत किया, वी आर हम्बल, फॉरगिव अस, लिसन टू आवर प्रेयर्स। जिस भी परमेश्वर आपको जो भी अवस्था में रखता है, उस अवस्था में नम्रता और दीनता के साथ रहना बहुत जरूरी है। कभी भी अपने आप को उठाना नहीं, कभी अभी अपने आप को बड़ा नहीं करना। जिस अवस्था में प्रभु ने आपको रखा है वहीं पर ही सुरक्षित रहकर, वहीं पर ही नम्रता और दीनता के साथ रहकर प्रभु की महिमा करना बहुत जरूरी है। एक आदमी था, वो बहुत नाटा था, नाटा समझते हैं, शॉर्ट मैन, ड्वार्फ, नाटा आदमी, 2.5-3 फुट का होगा मुश्किल से, जरा सा था वो 20-25 साल का, लेकिन हाइट 5 साल की जैसे, जरा सा नाटा। तो एक आदमी उसके पास आया, हंसने लगा नाटा, तो वो भी उसको देख के हंसने लगा, कौन ये नाटा आदमी, उसको देख के हंसने लगा।
तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे यार ये मेरे को देख के क्यों हंस रहा है?
तो मैं इसको जाके बात, वो जाकर उसके बात करने लगा, बोले दोस्त आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम पप्पू है। बहुत अच्छा नाम, लेकिन मुझे बहुत दुख है आप सरास नाटे। तो बोले आपको दुख हो सकता है, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं नाटा हूं इसका मेरे को कोई दुख नहीं, मैं तो इस अवस्था में भी खुश, मैं तो यहां पर भी खुश।
आप खुश है? इतना सा आदमी खुश है, वो क्यों?
बोले दो कारण।
कितना कारण है?
दो कारण।
पहला कारण यह है, कोई भी व्यक्ति को मेरे से बात करना है, कैसे बात करेगा?
कैसे?
बराबर है, झुक के
कैसे? पप्पू ठीक है पप्पू।
और मेरे को किसी से भी बात करना है, दूसरा कारण, कैसे करूंगा?
स्टीफन सिर उठा के, सीना तान के, सिर उठा के बात। तुम कर सकते हो ऐसे? जाओ, तुम्हारा दुख लेके तुम जाओ।
मैं नाटे ऊपर मैं खुश हूं, मैं जिस अवस्था में हूं मैं खुश हूं।
प्रभु ने जिस अवस्था में आपको रखा है, आप खुश हैं? दानियल को जिस अवस्था में प्रभु ने रखा, ही वॉज हैप्पी देयर, ही वॉज हम्बल देयर।
वहां पर वो नम्रता के साथ जीवन बिताया, वहां पर वो खुश था,
अपने आप को बड़ा करने का कोशिश नहीं किया। दानियल नम्र व्यक्ति था, नम्रता के साथ, दीनता के साथ दानियल ने अपना जीवन बिताया।
एक और बात हम पढ़ेंगे, चैप्टर 2:16, 17 और 18, दानियल की पुस्तक 2 अध्याय उसका 16, 17 और 18 पद मेहरबानी से पढ़े।
और दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की, कि उसके लिए कोई समय दहरा जाए तो वो महाराजा को महाराज को स्वप्न का फल बता देगा। दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह मिशाएल और अर्ज्या को ये हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो, बाबुल के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नाश न किया जाए।
यहाँ पर हम देखते हैं दानियल जाकर राजा से कहता है, हे राजा तेरे दास को थोड़ा समय दे तो मैं तेरा सपना और उसका अर्थ मैं बताऊंगा। ये बोलने के बाद वो कहां जाता है, अपने दोस्तों के पास जाता है और उनसे क्या कहता है, शत्रक मेशक अभेदनगो के पास जाता है और उनसे क्या बोलता है, आओ हम मिलकर प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें अनुग्रह दे कि हम उनके लोगों के साथ हम भी मर मिट न जाए, आओ हम मिलकर प्रार्थना करें। ये किस बात को बताता है, ये इस बात को बताता है, डैनियल वॉज अ मैन हु एनकरेज्ड अदर पीपल। डैनियल दूसरों को प्रोत्साहन देने वाला व्यक्ति था, दूसरों को सहारा देने वाला व्यक्ति था, दूसरों को उत्साहित करने वाला व्यक्ति था, दूसरों को प्रोत्साहन देने वाला व्यक्ति था। डैनियल चाहता तो कह सकता था, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं आप मेरे को सपना बता दीजिए, आप उसका अर्थ बता दीजिए, उसमें कुछ गलत है, कुछ गलत है। लेकिन दानियल को पता है मेरे तीन भाई और हैं, उनको थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है, उनको थोड़ा एनकरेजमेंट की जरूरत है, उनको थोड़ा प्रोत्साहन की जरूरत है। वो गया उनके पास और कहा, आओ हम मिलकर प्रार्थना करें। एनकरेजमेंट का एक और बात पढ़िए, चैप्टर टू, सेम चैप्टर, वर्स 48 एंड 49, 48 और 49, वर्स 48 एंड 49, चैप्टर टू क्या लिखा है,
तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया,
राजा ने दानियल का पोजीशन बहुत बड़ा किया
और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए,
हाँ बहुत प्रेजेंट्स दिए
और ये आज्ञा दी कि वो बाबुल के सारे बांध पर हाकिम और बाबुल के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। दानियल के विनती करने से राजा ने शद्रक मेशक और अभेदनगो को बाबुल के बांध के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियल आप ही राजा के दरबार में रहता करता था।
ध्यान दिया, राजा ने दानियल का पद ऊंचा किया, बहुत सारे गिफ्ट्स उसको दिया। देन वर्स 49 में लिखा है, दानियल के कहने पर राजा ने शद्रक मेशक और अबेदनगो का पद ऊंचा किया। ये किस बात को बताता है, दानियल वॉज अ मैन हु एनकरेज्ड अदर्स, ही नेवर यूज्ड टू डिस्करेज, ही ऑलवेज यूज्ड टू एनकरेज, प्रोत्साहन देने वाला। मैं कई बार सोचता हूं अगर मैं दानियल की जगह में होता, दानियल है राजा मेरे को माला पहनाता, दानियल मेरे को राजा मेरे को बहुत गिफ्ट्स देता, ओ शुक्रिया शुक्रिया शुक्रान है, और मेरा बहुत बड़ा पोजीशन के बैठता, मैं पहले मुड्डे में बैठता, अभी सोफा में बैठने वाला आदमी, फिर एकदम याद आता, अरे स्टीफन और शद्रक मेशक अबेदनगो जाने दो, कौन परवाह कर, बड़ी मुश्किल से राजा के आंखों में मेरा प्रमोशन, कौन उसको उनके बारे में बात करे, शायद उसके बारे में बात करने से मेरा वापस पोजीशन डाउन हो जाएगा, चुप रहो, बोलना नहीं, तीन लोग और हैं, बोलना नहीं। दानियल ने ऐसा सोचा नहीं, दानियल का जब राजा ने दानियल का पद ऊंचा किया, दानियल के कहने पर, दानियल के विनती करने पर राजा ने शद्रक मेशक अबेदनगो का पद भी, मतलब अगर दानियल नहीं कहता तो शद्रक मेशक अबेदनगो का पद ऊंचा होता नहीं। हम कैसे किस प्रकार के लोग हैं,
वो तो ऐसा ही है,
कोई है जिसको सहारे देने की जरूरत है, जो नीचे है संघर्ष कर रहा है खड़े होने के लिए, एक हथौड़ा लेके और उसके सिर पे वहीं बैठ, वहीं उसी के लायक है, उतना नहीं, हमको प्रोत्साहन देना, हमको उत्साहित करना है, हमको लोगों को बोलना है, ब्रदर खड़े होइए, आइए जाइए करिए गाइए बोलिए,
प्रोत्साहित करके, लोगों को एनकरेज करना, दानियल का स्वभाव था, दूसरों को एनकरेज करना, शद्रक मेशक अबेदनगो को वो सपोर्ट देता था, एनकरेज करता था। एक आदमी वो बहुत अच्छी नौकरी करता था, नौकरी नहीं, बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर था, बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर था। और एक बार वो जगह जगह नौकरी के लिए तलाश कर रहा था, कोई उसको नौकरी, फिर बाद में उसको मालूम पड़ा सर्कस चल रहा है उसके शहर में। क्या चल रहा है? सर्कस। तो सर्कस मैनेजर के पास गया, बोला सर मेरा नाम फलाना है, मेरे को एक नौकरी चाहिए, आपके सर्कस में मेरे को नौकरी मिलेगा? तो मैनेजर बोला एक ही नौकरी, एक ही पोस्ट, कोई भी पोस्ट हो चलेगा, कोई भी पोस्ट हो चलेगा। बोले हमारा बंदर लास्ट वीक मर गया, सर्कस का बंदर पिछले हफ्ते मर गया, वो अंदर का माल सब साफ करके उसका चमड़ी हमने रखा है, अब यही काम है तुमको, शो शुरू होने से पहले उस चमड़ी के अंदर घुसना है और इंसान नहीं बंदर बनकर सर्कस में यहां से वहां कूदना है, फांदना है, एक्टिंग करना है, यही नौकरी है, करने के लिए तैयार है? उसने पेट में हाथ रखे, बोला साहब ठीक है, ये पापी पेट का सवाल है, मैं ये नौकरी भी। बोले ठीक है कल आ। कल गया, पहले दिन तो खूब प्रैक्टिस किया, खूब प्रैक्टिस किया, ये इस पोल से ऐसे आता था, फिर ये हाथ छोड़ के दूसरा पोल पकड़, फिर दूसरा पोल छोड़ के फिर वहां से, फिर लोग बीच बीच में मूंगफली केला डालते थे तो ऐसे करके बंदर जैसा खाना, प्रैक्टिस किया, बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो गया। शो का दिन आया, शो स्टार्ट करने का टाइम, वो जंगली जानवरों का आइटम आया, अब तो इसमें कौन है, मिस्टर बंदर भी वो आया, वो आके ऐसा अपना शो करने लगा, वो बहुत अच्छी तरह कर रहा था, लोग सब ताली बजा रहे थे, वाह वाह, किसी ने मूंगफली फेंका, किसी ने केला फेंका, वो सब खा रहा था और वो बड़े ध्यान से कर रहा था अपना 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 एक्सरसाइज, वो ध्यान से। लेकिन करते करते गलती से उसका हाथ स्लिप हो गया, सीधा गया किसके पास, शेर के पास, सर्कस का शेर के पास, उसका जान निकल गया, उसका जान निकल के वो मन से ऐसे दिल से बोला अयो, ऐसा बोला, बंदर बोलता है क्या अयो, लेकिन फिर भी वो डर गया इतना, अंदर कौन है, अंदर हमारे जैसा आदमी है, इसलिए उसको शेर देख के वो डर गया, बोला अयो। एकदम पास में से आवाज आई, ज्यादा शोर नहीं करना नहीं तो अपन दोनों की नौकरी, समझ गए, ये शेर कौन है, ये शेर बंदर नहीं, ये शेर भी एक आदमी जैसा है, वो शेर सर्कस का शेर पहले मर गया, उसके चमड़े के अंदर एक आदमी, ये बंदर के चमड़े के अंदर जैसा आदमी है वैसा एक आदमी शेर के चमड़े में भी है। तो ये बंदर जब शेर के पास आया उसने कहा यो, तो यह शेर बोलता है चुप बैठना नहीं तो आप दोनों की नौकरी। वो मैं सोच रहा था वो शेर चाहिए तो क्या कर सकता था, ऐसा बोलता तो वो क्या करता, सारा सर्कस चौपट। लेकिन इसने कहा कोई बात नहीं यार, बैठ जा, तेरे को घबराने की जरूरत नहीं है, तेरे को डरने की जरूरत नहीं, मैं तेरा बड़ा भाई हूं है, तो मेरे पास बैठ जा, आराम से बैठ जा, अपन दोनों पास पास बैठेंगे, ये भी एक नया शो, बंदर के पास कौन बैठा है। कहने का मतलब वो आदमी अगर उसको प्रोत्साहन करके उसको शांति से नहीं बिठाता तो सारे सर्कस का चौपट शो हो जाता। कहने का मतलब कई बार हम जो विश्वासी हैं हमें एनकरेजिंग पीपल बनना बहुत जरूरी, दूसरों को प्रोत्साहन करना, दूसरों को उत्साह बढ़ाना। वो लोग छोटे लोग हो सकते हैं, वो लोग निर्बल लोग हो सकते हैं, वो लोग कमजोर लोग हो सकते हैं, लेकिन उनको ढाढ़स बनाना, उनको आगे बढ़ाना, ये आपका और मेरा कर्तव्य है। अमेरिका में एक चर्च था, उस चर्च में ऑफरिंग्स एक संडे को सब लोग लिफाफे में ऑफरिंग्स डाल कर देते और हर लिफाफे में नीचे नाम लिखना पड़ता था, ये मिस्टर स्टीफन एंड चरियान एंड फैमिली का ऑफरिंग है। तो पास्टर साहब हर बार ऑफरिंग गिनते थे सबका, तो एक परिवार है जिसके जिनका परिवार से सबसे ज्यादा ऑफरिंग मिलता था। लेकिन पास्टर को बहुत आश्चर्य हुआ, और वह आश्चर्य इसलिए क्योंकि वो परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है, और उस परिवार में कमाने वाला एक ही आदमी, वो ब्रदर ही सिर्फ कमाते हैं, वो सिस्टर और लगभग 7 बच्चे हैं उनके, कोई भी कमाता नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा ऑफरिंग किसका आता है? उसी परिवार का। उस परिवार के मुखिया हैं, उसके हस्बैंड का, उनके फादर का नाम, मेन हेड ऑफ द फैमिली का नाम था मिस्टर लिटिल, पता है ना, मिस्टर लिटिल, ये सब अंग्रेजी नाम है, मिस्टर लिटिल, मिस्टर स्मॉल, मिस्टर लॉन्ग, ये सब उनका नाम होता है। तो इनका नाम था मिस्टर लिटिल, तो इनके बच्चों का नाम क्या होगा? हैं? पॉल लिटिल, जॉन लिटिल, मोजेस लिटिल, हैं? टिमोथी लिटिल, सब लिटिल। कितने लिटिल थे? 7 लिटिल। लेकिन सबसे ज्यादा ऑफरिंग लिटिल फैमिली में से आता था। एक दिन पास्टर गया उनके घर में, बोले लिटिल, योर फैमिली इज द फैमिली दैट पुट्स द मैक्सिमम ऑफरिंग, व्हाई? तो वो मिस्टर लिटिल ने क्या बोला मालूम है? सर, एवरी लिटिल पुट्स, हमारे घर का हर सदस्य चंदा डालता है, हमारे घर के हर सदस्य को मैं एनकरेज करता हूं चंदा डालने के लिए, इसलिए जब 9 जने डालते हैं, थोड़ा थोड़ा ही डालते हैं, लेकिन वो इकट्ठा होने के बाद सबसे ज्यादा हो जाता है। एवरी लिटिल हेल्प्स। कहने का मतलब, अगले को जिसको हमको एनकरेजमेंट देना है वो लिटिल होगा, वो स्मॉल होगा, लेकिन हमारा एनकरेजमेंट, हमारा प्रोत्साहन उनको इतना सहायता करेगा, इतना मदद करेगा, वो जो काम प्रभु के लिए करेंगे वो बड़ा अद्भुत काम होगा। दानियल के जीवन में से हम यही सीखते हैं, वी मस्ट बी मेन ऑफ एनकरेजमेंट एंड नॉट ऑफ डिस्करेजमेंट। दानियल ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को प्रोत्साहन दिया, उनको आगे बढ़ाया, उनके साथ प्रार्थना किया, उनके पद को ऊंचा किया। लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो को राजा ने जब ऊंचा किया, उन्होंने दानियल को याद किया? उन्होंने दानियल को याद किया। पढ़िए चैप्टर 3:30, 3:30 क्या लिखा है? चैप्टर 3:30,
तब राजा ने बाबुल के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया।
तब राजा ने बाबुल प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। तब उन्होंने दानियल के बारे में सोचा? नहीं सोचा। इसका मतलब अजीज विश्वासियों, हमें दानियल के समान बनना है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान प्रोत्साहन देना, उत्साहित करना, लोगों को आगे बढ़ाना। एक और दानियल की खूबी हम देखेंगे, चैप्टर 1:8, दानियल के पुस्तक 1:8, Daniel 1:8।
परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का धाक मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजो के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े।
दानियल वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर। दानियल एक दृढ़ निश्चय वाला आदमी था, जो कहता था वो करने वाला आदमी था। यहां पर हम पढ़ते हैं, दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खा के अपने आप को अपवित्र नहीं, अपने आप को दुखी, दूषित नहीं करेगा, अपने आप को अशुद्ध नहीं करेगा। मन में ठान लिया और किया क्या? अंत तक उसने ऐसा किया। आर वी मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर? दानियल चाहता तो समझौता कर सकता था, दानियल चाहता तो एक कॉम्प्रोमाइज कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जो प्रभु के सामने बोला, जो वादा प्रभु से किया, उसको निभाया, प्रभु के सामने उसको अंत तक निभाया। चाहा उसने जो चाहा मन में दिखाई, जो इच्छा मन से दिखाई, तीव्र इच्छा और निर्णय जो मन से लिया, इतना दृढ़ निश्चय वाला आदमी था, परमेश्वर के अनुग्रह से उसने वो पूरा किया। इंग्लिश में एक कहावत है, मुझे नहीं मालूम किसने कहा है, लेकिन कहने वाले ने सही कहा है, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां चाह है
वहां राम है। क्या बात है ब्रदर, आए नहीं हो? जहां चाह है वहां राम। इफ देर इज अ विल देर इज अ वे। चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो परमेश्वर भी आपकी मदद नहीं कर सकता। दानियल ने क्या किया? देर इज अ विल, he had a strong will power. मैं नहीं खाऊंगा राजा का भोजन, मतलब नहीं। हम बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। तीन दोस्त जंगल में घूमने गए, तीन लड़का तीन लड़के लोग तीन दोस्त जंगल में घूमने गए। अपने बैगेज जब उन्होंने पैक किया, सब कुछ ले लिया, खाने के लिए सब अच्छा अच्छा खाना ले लिया, चाइनीज भी ले लिया, कॉन्टिनेंटल भी ले लिया, मिठाई भी ले लिया, सब ले लिया। वो लोग गए घूमने के लिए, एक चीज लेना भूल गए। जंगल के बीच में जाकर याद आया, एक चीज लेना भूल गए। अयो क्या चीज था मालूम है? पीने के लिए पानी। एक ने दूसरे को बोला, यार तू जाके पानी। उसने कहा नहीं नहीं तू जा। मैं नहीं नहीं तू जा। तो तुम्हें में होती गई। लास्ट में एक ने बोला, तुम लोग क्या दोस्त हो यार, दोस्ती नहीं निभा सकते, मैं जाऊंगा। मैं कहां जाऊंगा? मैं जाकर पानी ले। लेकिन एक कंडीशन है, एक शर्त है, एक शर्त है, मेरे वापस आने तक खाना मत खाना। कितना भी भूख लगे, कितना भी मुंह से पानी आए, मेरे वापस आने तक खाना मत खाना। बराबर मंजूर है? हाँ मंजूर, बिल्कुल। बोले ठीक है मैं जाता हूं। वो गया। ये दो दोस्त इंतजार कर, बहुत देर तक इंतजार किया कि धीरे से एक दोस्त दूसरे को बोलता है, यार अब आना मुश्किल, अब उसका आना। तो दूसरा दोस्त कहता है, हाँ यार मैं भी यही सोच रहा हूं, जो तू सोच रहा है वही मैं भी सोच रहा हूं। अपन क्यों ना आमीन बोल दे। आमीन मतलब खाने के लिए आमीन। अपन क्यों ना खाना चालू कर दे, फिर वो आएगा, उसका हिस्सा रख देंगे और बोलेंगे, तू इतना देर से आया इसलिए हमने खा लिया, तेरा हिस्सा हमने रखा है, तेरा हिस्सा हमने नहीं खाया है, इसलिए तू तेरा हिस्सा खा। और जैसे ही वो खाना खाने की तैयारी करने लगे और टिफिन खोला, फिर एक ने चाइनीज दूसरे ने कॉन्टिनेंटल, इतने में वो कूद कर आ गया। कौन? वो दोस्त जो पानी लेने। बोले ऐसे निभाते दोस्ती है? मेरे को मालूम था तुम मेरे लिए इंतजार नहीं। तो बोले क्यों, तू कहां गया था पानी लेने? बोले मैं कहीं नहीं गया था, इस पेड़ के पीछे छिपा हुआ था, इस बात को टेस्ट करने के लिए जो तुम बोलते हो वो तुम करते हो या नहीं। लेकिन आज मालूम पड़ा तुम करने वालों में से नहीं हो, सिर्फ बोलने वालों में से। अजीज विश्वासियों, क्या कई बार हम भी ऐसे बोलने वालों में से नहीं? हर साल दिसंबर 31 को आपके यहां कैसे पता नहीं, हमारे यहां लोग निर्णय लेते, डिसीशन आंसू बहा बहा के निर्णय लेते। तो बोले एक साल हो गया, एक साल और प्रभु देता, उनका कोई आता पता। बोलते हैं, देर इज नो स्ट्रांग विल पावर, दृढ़ निश्चय। प्रभु ऐसे लोगों को आशीष नहीं दे सकता, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। इफ देर इज अ विल देर इज अ वे, चाह है तो राह है, नहीं मैं करूंगा, ऐसे लोगों को ये प्रभु आशीष देता। जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन पूछता हूं, सोच समझ के जवाब देना। हु इन्वेंटेड एरोप्लेन फ्लाइंग? राइट ब्रदर्स। क्या नाम था राइट ब्रदर्स का? जॉन राइट, विल्बर राइट। जॉन राइट, विल्बर राइट, दोनों विश्वासी थे। बोथ वर फाइन गुड बिलीवर्स, दोनों प्रभु यीशु मसीह के सच्चे और अच्छे विश्वासी थे। जब दोनों ने फ्लाइंग एरोप्लेन का इन्वेंशन आविष्कार किया, वे लोग रातों रात दुनिया में मशहूर हो गए, बहुत फेमस हो गए, बहुत बड़े लोग हो गए, राइट ब्रदर्स। वो हमारे चेयर में कौन रहे हैं? जॉन राइट और विल्बर राइट, दोनों आए हैं। ओ रातों रात फेमस हो गए।
एक दिन दोनों किसी काम से लंदन गए। लंदन गए तो सुबह सुबह वो लोग संडे को चर्च जाने की तैयारी में थे। इतने में एक संदेशवाहक उनके पास आया, एक मैसेंजर उनके पास आया। मैसेंजर एक मैसेज लेके आया। कहां से मैसेज लाया मालूम है? हर हाइनेस। कौन है? रानी, इंग्लैंड की महारानी। इंग्लैंड की महारानी से एक संदेश आया। बड़े भाई जॉन ने पढ़ा, वहां पर रानी ने लिखा है, डियर राइट ब्रदर्स, प्रिय राइट बंधुओं, मेहरबानी से मेरे महल में आओ, मैं आपको प्लेन उड़ाते हुए देखना चाहती हूं। आई वॉन्ट टू सी यू पीपल फ्लाइंग। मैं आपको प्लेन उड़ाते हुए देखना चाहती हूं। अगर आप वहां होते तो क्या करते? लेकिन वो जॉन ने वापस क्या मैसेज भेजा मालूम है? वो संदेश वाहक को बोला, गो प्लीज गो एंड टेल हर हाइनेस राइट ब्रदर्स डोंट फ्लाई ऑन संडेज। साहब जाकर महारानी से बोलना, ये राइट बंधु, ये राइट भाई लोग जो हैं, संडे को मतलब प्रभु के दिन उड़ान नहीं भरते हैं, उड़ाते नहीं है। क्या करते हैं संडे को? जाकर प्रभु का धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं। हम क्या करते हैं संडे को? पूछो मत। एक दो बात होता तो बोलता, अभी क्या बताऊं? What is the Lord's must be given to the Lord। जो प्रभु का है वो प्रभु को देना है, उसके लिए दृढ़ निश्चय होना। Right brothers, don't fly on Sundays। Daniel was a man of strong willpower। दृढ़ निश्चय रखने वाला एक व्यक्ति था। One more verse and I like to close with that। Chapter 9, verse 3। Daniel के पुस्तक 9 अध्याय उसका 3 पद। Daniel chapter 9, verse 3।
तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके बिगड़ावे के साथ प्रार्थना करने लगा।
प्रार्थना करने लगा। Last but not the least, Daniel was a man of prayer। Daniel एक प्रार्थना पुरुष था, प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। राजा का हुक्म भी आया, मेरे अलावा और कोई किसी से प्रार्थना नहीं करेगा, पर फिर भी दानियेल यरूशलेम की ओर अपनी खिड़की खोलकर बराबर दिन में प्रार्थना, परमेश्वर से हर बात के लिए वो प्रार्थना करने वाला प्रार्थना पुरुष था। अजीज विश्वासियों, क्या आप प्रार्थना पुरुष हैं? क्या आप प्रार्थना करने वाली स्त्री हैं? क्या आप प्रार्थना करने वाले विश्वासी हैं? आपका मालिक कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह इस दुनिया में था, रात को वो क्या करता था? प्रार्थना करता। जब आपका और मेरा धन्य प्रभु यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना में बिताता था, आपको और मुझे प्रार्थना करने की कितनी ज्यादा जॉर्ज मुलर के बारे में सुना होगा, प्रार्थना पुरुष। वो बहुत बड़ा ऑर्फनेज चलाता था, अनाथ आश्रम। एक दिन वो शेफ ने है, वो खाना देने वाले व्यक्ति ने आकर बोला, सर देयर इज नथिंग फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में हमेशा वो ब्रेड और मक्खन और जैम वो देते थे और बच्चों को पीने के लिए दूध देते थे। एक दिन सुबह वो आकर कहता है, खानसामा देयर इज नथिंग फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट नाश्ते के लिए देने के लिए कुछ भी नहीं। जॉर्ज मुलर ने क्या कहा? इंग्लैंड का रहने वाला आदमी जॉर्ज मुलर ने कहा, मेक द चिल्ड्रन सिट डाउन ऑन द डाइनिंग हॉल, आई एम गोइंग टू प्रे। बच्चों को खाना खाने के लिए हॉल में बिठा दो, मैं प्रार्थना करने के लिए। जॉर्ज मुलर ने प्रार्थना किया, प्रभु जी खाने के लिए कुछ नहीं है, अगर कोई कर सकता है सहायता तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। वो प्रार्थना करके बाहर निकल ही रहा था, इतने में दरवाजे में एक खटखटा। जॉर्ज मुलर गया, एक अनजान आदमी सामने खड़ा। वो उस आदमी ने पूछा, जॉर्ज मुलर कौन है? मेरे को जॉर्ज मुलर से मिलना है। बोले मैं ही हूं जॉर्ज मुलर। क्या बात है, क्या हो गया? बोले नहीं, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन का सर्वेंट हूं, मेरे मालिक का बहुत बड़ा बेकरी बिजनेस है, और उन्होंने ये पता दिया और ये नाम दिया और कहा आज का सारा माल जॉर्ज मुलर के घर पे जाकर पहुंचा। और सुबह सुबह मैं आपके पास आया हूँ, पूरी रात में यात्रा कर रहा था और मेरे मालिक के ऑर्डर के अनुसार ये ट्रक आया हुआ है, सारा ब्रेड और बटर और जैम आपने। जॉर्ज मुलर ने कहा खरसा में से, सर ब्रदर प्लीज कम टेक ऑल दिस ब्रेड ऑल द जैम ऑल द बटर, सारा मक्खन जैम लेकर बच्चों को परोस कर। अब क्या बाकी है? दूध बाकी। वापस जॉर्ज मुलर प्रार्थना करने के लिए कमरे में, प्रार्थना करने के बाद जब वो वापस बाहर निकल रहा था, कौन है अनजान आदमी, क्या हुआ, किससे मिलना है? नहीं मिलना तो किसी से नहीं है, लेकिन इस ऑर्फनेज के मालिक से मेरे को काम है। बोले मैं ही हूं, मेरा नाम जॉर्ज मुलर है, मैं ये ऑर्फनेज चलाता हूं। बोलिए क्या काम? बोले मैं इस शहर से उस शहर दूध का टैंक लेकर जा रहा था, ठीक आपके ऑर्फनेज के सामने मेरा गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया, मैंने सोचा मैं ये दूध क्या करूं, कल तक या गाड़ी ठीक करने तक ये सारा दूध खराब हो जाएगा। मैंने देखा वहां पर जॉर्ज बुलर ऑर्फनेज होम, मैंने सोचा यहां पर अनाथ आश्रम के बच्चे हैं, मैंने सोचा दूध खराब होकर फेंकने से अच्छा सारा दूध, आप मेहरबानी कीजिए टैंकर भर का भरा हुआ दूध है। जॉर्ज बुलर ने कहा ब्रदर मिल्क इज कम, लेकर बच्चों को। अजीज विश्वासियों, मुझे नहीं मालूम किसने कहा, लेकिन कहने वाले ने सही कहा है, प्रेयर मूव्स दोज हैंड्स दैट मूव द वर्ल्ड, प्रार्थना उन हाथों को हिलाते हैं जो हाथ इस दुनिया को संभालते हैं। कौन से हाथ दुनिया को संभालते हैं? परमेश्वर के हाथ। और परमेश्वर के हाथ को अगर हिलाना है एक ही जरिया है प्रार्थना। यीशु मसीह ने प्रार्थना का नमूना हमें दिखाया, दानियल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, क्या हम लोग प्रार्थना करते हैं? एक मेडिकल डॉक्टर से मिलना हुआ मेरा, उन्होंने इस प्रकार मुझसे कहा, हमारा हार्ट बीट परमेश्वर से बात करता है। क्या बात कर रहे हार्ट बीट परमेश्वर से बात? बोले हाँ। बोले हार्ट बीट कैसे बोलता है मालूम है? मैंने एकदम अपने दिल में हाथ रखा, पता नहीं कहाँ, कहीं तो भी दिल है, तो वहां पर हाथ रख के देखा तो मेरा दिल ऐसा बोला था धक 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 धक। तो मैंने उनसे, उन्होंने मुझसे पूछा आपका दिल कैसे आवाज करता है? मैंने कहा धक धक करके आवाज करता है। बोले नहीं, टेक्निकली एवरी ह्यूमन हार्ट, हर आदमी का दिल धक धक नहीं बोलता है, वो एक्चुअली ऐसे बोलता है लव डब लव डब लव डब। आया समझ में? लव बोलने के बाद, उन्होंने ऐसा कहा, लव बोलने के बाद एक माइक्रो सेकंड के लिए दिल रुक जाता है, उसके बाद डब बोलता है, फिर जरा सा देर के लिए क्षण के लिए दिल रुक जाता है, फिर लव बोलता है, फिर रुकता है, फिर डब, फिर लव, फिर डब, फिर लव, फिर डब। और उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि दिल लव बोलने के बाद परमेश्वर से पूछता है, प्रभु जी डब बोलूं क्या? प्रभु बोलता हां बोल, डब लव बोलो क्या? हां बोलो लव, बोलो डब, बोलो लव, इतना सही सा टाइम है। दिल प्रभु से पूछता है लव बोलने के बाद, प्रभु जी डब बोलो क्या? नहीं बोलना, बस आपका और मेरा खेल सब। इतना अच्छा सुंदर लंबा चौड़ा शरीर एक सेकंड में ढेर, जब दिल परमेश्वर से बात कर सकता है, आप और मैं, हम परमेश्वर से क्यों नहीं बात कर सकते? प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, प्रार्थना से ही हम आशीष पाते हैं, प्रार्थना से ही हम अनुग्रह पाते हैं। दानियल प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। अजीज विश्वासियों, हम अपने आप के जीवन को जांचें, संपूर्ण समर्पण से अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे, नम्रता के साथ अपना जीवन बिताएं, दूसरों को प्रोत्साहित करते हुए अपना जीवन बिताएं, दृढ़ निश्चय रखने वाले लोग बनकर जीवन बिताएं, प्रार्थना करने वाले लोग बनकर परमेश्वर से मांगे, आशीष पाकर प्रभु की महिमा के लिए जीवन बिताएं। और प्रभु हमारी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। जब सारे सर झुके हुए हैं और सारी आंखें बंद हैं, हम अपने आप के जीवन को जांचें। डू we lead a holy life like Joseph did? क्या यूसुफ के समान एक पवित्र जीवन हम बिताते हैं? Do we live before God like Nehemiah did? जैसे नेहमाया परमेश्वर के सामने जीवन बिताया, क्या हम परमेश्वर के सामने जीवन बिताते हैं? Do we have strong willpower to stand alone for God like Daniel? दृढ़ निश्चय वाले, प्रार्थना करने वाले दानियल के समान क्या हमारा जीवन है? अपने आप को हम जांचें, अपने आप को हम परखें। इन अंतिम दिनों में एक पवित्र यूसुफ हम बने, श्रेष्ठ और उत्तम नेहमिया हम बने, दमदार दानियल हम बने। May God help all of us to be holy Josephs, outstanding Nehemiahs and daring Daniels. हमारे जीवित महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। आपके वचन से आपने हमसे बातचीत की, आपका लाखों लाख धन्यवाद। हमारी सहायता करें प्रभु जी, दानियल के समान, नेहमिया के समान, यूसुफ के समान अपना जीवन आपके मर्जी के मुताबिक हम बिताकर, महज प्रभु जी बोलने वाले नहीं, लेकिन प्रभु को सच्चे दिल से प्रेम करके प्रभु के लिए दृढ़ निश्चय रखने वाले लोग बनकर, प्रभु के लिए पवित्रता के साथ जीवन बिताकर, प्रभु के सम्मुख जीवन बिताकर, प्रार्थना करके अकेले प्रभु के साथ खड़े रहने के लिए आप हम सबकी सहायता कीजिए। पिताजी, हम जितने यहां जमा हैं, हम सबकी मदद और सहायता करें कि हम सब पिताजी यूसुफ के समान, नेहमिया के समान, दानियल के समान और भी अनेक विश्वास के वीरों के समान इन अंतिम दिनों में अपना जीवन बिताकर आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा हम कर सकें। सहायता कीजिए, अनुग्रह दीजिए, दया दिखाइए। धन्यवाद के साथ छोटी विनती, प्रार्थना, निवेदन हमारे मुंशी और वापस जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के धन्य और सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं। आमीन।